वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 51-52-53 पृष्ठ संख्या 544। मेरे पीछे शब्द बोलिए बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष विदस्य च विविक्तस्य विलघ्वासि यतवा कायमानसः ध्यान योगे परो नित्यम् वैराग्यम् समुपाश्रितः अहंकारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। शब्दार्थ बुद्धिया बुद्धि से विशुद्धया नितांत शुद्ध युक्तः रत धृत्या धैर्य से आत्मानं स्वा को नियम्य बस में करके च भी शब्द आदि विषयान इंद्रिय विषयों को त्यक्त्वा त्याग कर राग आसक्ति द्वेषं तथा घृणा को युदस्य एक तरफ रखकर च भी विविक्त से भी एकांत स्थान में रहते हुए लघु आशी अल्प भोजन करने वाला यत बस में कर गए वाक वाणी काय शरीर मानस तथा मन को ध्यान योग्य पर समाधि में लीन नित्यम 24 घंटे वैराग्यम वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेकर अहंकारम मिथ्या अहंकार को बलम झूठे बल को दर्पम झूठे घमंड को कामम काम को क्रोधम क्रोध को परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विमुच्य त्याग कर निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित शांतः शांत ब्रह्म भोजाय आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकां राधाकांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशा तदेश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे, श्लोक निकालिए। भगवान कह रहे हैं बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानम नियमचा। तो ये तीन श्लोक जो लगातार हैं, इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं सन्यास की विधि का। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है और ज्ञान की जो पराधिष्ठा है उसको संक्षेप से मैं बताऊंगा। तो संक्षेप का मतलब तीन श्लोकों में भगवान ने जो है ये वर्णन किया है। तो यहां पहले भगवान कहते हैं बुद्धिया विशुद्धि आयुक्त, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर के, विशुद्ध बुद्धि के से युक्त होकर के, और धृत्यात्मानम नियमचा धैर्य के द्वारा मन को बस में करके। फिर शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको त्याग करके। फिर राग द्वेष विदुषचा, राग और द्वेष से भी मुक्त हो करके। विविक्त से भी एकांत में निवास करते हुए लघुभाषी बहुत थोड़ा भोजन करते हुए, यतमा काय मानस है, अपने वाणी शरीर और मन को जीत करके ध्यान योग्य परो नित्यम, नित्य ध्यान योग के परायण, वैराग्यम समुपासित और वैराग्य का अच्छी प्रकार से आश्रय लेकर के, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, अहंकार को त्याग करके, बल को त्याग करके, दर्प को त्याग करके, काम को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके, और परिग्रह परिग्रह का मतलब भौतिक वस्तुओं के संग्रह को त्याग करके, विमुच्छ निर्मम शांतो, निर्मम हो जाए, निर्मम का मतलब ममता रहे, मेरा नहीं है कुछ भी, शांतो वो शांत हो जाए तो फिर ब्रह्म भू आए कल्पते, तो ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं किस बात की, बुद्धिया विशुद्ध आयुक्त, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। ठीक है, बुद्धि विशुद्ध होने का मतलब यही है कि आप सत्व गुण में आ जाते हैं, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बाद भगवान कह रहे हैं धृति धृत्या आत्मानम नियमजा, तो धृति के द्वारा मन को बस में कर गए, तो प्रभु लिखते हैं तात्पर्य में इस प्रकार वह मन को बस में करके सदैव समाधि में रहता है। ठीक है, धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा मन को बस में करने का मतलब है इस प्रकार से अभ्यास करें। इसके बाद भगवान कह रहे हैं शब्द आदि में श्यांश तोक्ता, सब आदि विषयों को त्याग करके, तो प्रभुपाद लिखते हैं वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। ठीक है ना, इसके बाद भगवान कहते हैं राग द्वेष विदुषचा, राग और द्वेषों से मुक्त होकर के, तो प्रभुपाद लिखते हैं और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। राग का मतलब ये चाहिए ये चाहिए, और द्वेष का मतलब ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, है ना, तो राग द्वेष से मुक्त होकर के, राग द्वेष हमेशा बदलते रहते हैं, ये कोई स्थिर चीज नहीं होती है राग और द्वेष। आजकल जो है लोग प्रेम के नाम पर राग और द्वेष में भरे हैं, और कहते हैं कि बहुत प्यार है बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं बदलता, राग और द्वेष हमेशा बदलते रहते हैं, है ना, अभी राग है फिर उसी से द्वेष हो जाता है, लेकिन किसी स्त्री पुरुषों में है ना कहते हैं प्रेम है, लेकिन वो प्रेम थोड़ी है, वो राग द्वेष है, और राग होता है फिर द्वेष हो जाता है ना, तो तलाक देते हैं, तलाक कर देते हैं, ये एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, स्त्री पुरुष को मार डालती है, पुरुष स्त्री को मार डालता है ना, राग द्वेष है, तो राग द्वेष से मुक्त होकर के। इसके बाद भगवान कहते हैं विविध सेवी, तो प्रभु लिखते हैं तात्पर्य में ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। इसके बाद भगवान कहते हैं लघुभाषी, मतलब थोड़ा खाता, तो प्रभु लिखते हैं वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं। ठीक है, फिर भगवान ने कहा यतवा काय मानसः, अपने शरीर और वाणी और मन को बस में करता है, तो प्रभु लिखते हैं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद भगवान कहते हैं ध्यान योग्य परो नित्यम वैराग्यम समुपासितः, ध्यानों के परायण हमेशा वैराग्य का आश्रय लेकर के, तो स्पष्ट है। इसके आगे भगवान कहते हैं अहंकार विमुच्छ, विमुच्छ शब्द जो है सबके साथ आएगा, अहंकार अहंकार विमुच्छ, तो प्रबल कहते हैं वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है, मैं ये शरीर हूं, ठीक है ना, जो दर्प या गर्व है वो अलग है, अहंकार अलग है, अहंकार का मतलब है मैं ये शरीर हूं, तो शरीर के प्रति जो अपना अहंकार है उसको त्याग देता है। इसके बाद बलम बलम विमुच्छ, बल को त्याग कर गए, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं नहीं वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है, बल को त्यागने का मतलब ये है, लोग क्या सोचते हैं है? कि कई प्रकार की चीजें खाते हैं किस लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए और शरीर को मोटा बनाने के लिए, है ना। तो बल को त्यागने का यही मतलब है कि वो हाँ। तो बलम विमुच है, भगवान कहते हैं बलम विमुच है, जिसका प्रभुबाजी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ना ही अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल था बलवान बनाने की इच्छा करता है। शरीर को मोटा बनाना, बलवान बनाने, इसके लिए कई भौतिक चीजें नहीं खाता है। भौतिक का मतलब क्या है, जो कृष्ण को भोग नहीं लगाई जा सकती है, है ना। तो भौतिक वस्तुएं हैं जो कि अपनी चेतना को भी दूषित करते हैं, है कि नहीं। तो वो नहीं चाहता है, जैसे सुअर है मल खाता है तो उसका शरीर खूब मोटा बन जाता है, उसमें फास्फेट होता है, लेकिन कितना अशुद्ध है वो भोजन, उसे चेतना दूषित होती है, है ना। तो लोग ना अपनी चेतना को दूषित करने की चिंता नहीं करते हैं कि चेतना कितनी दूषित है, लेकिन जितनी भी गलत चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, वो खाते हैं जिससे उनका शरीर मोटा हो जाए, बलवान बन जाए, है ना। यहाँ पर बलम विमुच्य का मतलब यही है कि ऐसी चीजें खाने की जरूरत नहीं जो चेतना अपनी दूषित करें और शरीर अच्छा हो जाए, है ना। तो क्या फायदा है ऐसे कुत्ते और सुअर की तरह जो ना मोटे हो जाए, बलवान हो जाए, तो फायदा क्या है, है ना। तो बलम विमुच्य का प्रभुपाद जी मतलब बताते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं दर्पम विमुच्य, दर्पम विमुच्य। तो प्रभुपाद कहते हैं चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। मिथ्या गर्व, शरीर के कारण जो ना कई प्रकार के व्यक्ति के अंदर गर्व पैदा हो जाता है, अपने कुल का अभिमान है कि नहीं, और अपने धन संपत्ति का अभिमान है, तो ये गर्व है। तो अगर अपने को शरीर नहीं समझता तो फिर शरीर से संबंधित वस्तुओं का उसे गर्व क्यों होगा, है ना। तो दर्पम विमुच्य। इसके बाद भगवान कहते हैं कामम विमुच्य, कामम विमुच्य। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। तो काम का त्याग करने का ये मतलब है कि भगवान की कृपा से जो कुछ मिल गया उसमें संतुष्ट है, तो कामम विमुच्य। इसके बाद भगवान कहते हैं क्रोधम विमुच्य है? तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर कभी क्रोध नहीं होता, है ना, क्रोधम विमुच्य। इसके बाद भगवान कहते हैं परिग्रहम विमुच्य, परिग्रह है? तो प्रभुपाद लिखते हैं ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, परिग्रहम विमुच्य। हाँ, तो परिग्रहम विमुच्य का मतलब क्या है कि इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, परिग्रह का मतलब यह है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, निर्ममः। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, तो वह इस प्रकार वह जब मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। इसको कहते हैं निर्मम। निर्मम का मतलब क्या है, ममता रहे, मम नहीं, मेरा नहीं। निर्मम का मतलब ऐसे सामान्य भाषा में सोचते हैं कठोर, निर्मम का मतलब कठोर, है ना भाई, बहुत निर्ममता से आपने मारा किसी बच्चे को या किसी को, तो मतलब क्या हुआ, कठोरता से। लेकिन निर्ममता का मतलब कठोरता नहीं है, निर्मम का मतलब होता है मेरा नहीं, मेरा नहीं, अपना अधिकार नहीं जमाता किसी पर, ठीक है ना। निर्मम का यही मतलब है, भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। इसके बाद भगवान कहते हैं शांतो। तो प्रभुपाद लिखते हैं और यही ब्रह्म आत्म, ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है, यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में 270 इस प्रकार हुआ है। अब शांत की व्याख्या प्रभुपाद इतनी लंबी कर रहे हैं और भगवदगीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, इसमें भी शांत है, सशांति मापनोति आपूर्यमाणम अचलय प्रतिष्ठम समुद्रमा बहा प्रविशन्ति अन्वत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न कामे कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। यह श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है, दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 70। इसमें भगवान तुलना कर रहे हैं जो नदियों के बहुत से जल समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से कामनाएं, उसके अंदर जो कामनाएं हैं वो आती हैं, लेकिन उसमें क्षोभ उत्पन्न नहीं करते। नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं और समुद्र अचल है प्रतिष्ठा, समुद्र की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है, समुद्र में क्षोभ नहीं होता है। कितना पानी नदियों का जाता है समुद्र में, लेकिन समुद्र में कोई क्षोभ नहीं, जो कहते रहता है। उसी प्रकार से बहुत से कामनाएं व्यक्ति के अंदर आते हैं, दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन वो क्षुब्ध नहीं होता है ना, तो वो धन शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम श्रीमद् भागवत से सुनेंगे कपिल भगवान की जो शिक्षा है, तो इसमें बहुत विस्तार से कपिल भगवान बताते हैं। अब इसमें भगवान ने एक बात कही है, ध्यान योग परो नित्यम, कि नित्य ध्यान योग के परायण। अब ध्यान का मतलब क्या होता है? आजकल ध्यान का मतलब लोग क्या सोचते हैं, सूर्य का ध्यान या प्रकाश का ध्यान करना, ज्योति लोग कहते हैं भाई ज्योति का ध्यान करो, या फिर वो ध्यान के लिए कहते हैं कि किसी भी चीज का ध्यान करो, किसी भी एक वस्तु में अपने मन को केंद्रित करो, है ना, तो इसको ध्यान कहते हैं। लेकिन सब गलत है। कोई कहता है ध्यान का मतलब आपकी जो मर्जी हो उसी में आपने धन ध्यान को केंद्रित कर लो, कोई भी रूप में जो है आप ध्यान को केंद्रित कर लो, है कि नहीं, तो सब गलत है। ध्यान के जो केंद्र है कौन है, भगवान है। भगवान का जो रूप है, भगवान विष्णु का रूप या कृष्ण का रूप या राम का रूप, जितने विष्णु तत्व हैं उनका ध्यान किया जा सकता है। जैसे नरसिंह भगवान, वराह भगवान, वामन भगवान, इनका ध्यान किया जा सकता है। भगवान की लीलाओं का ध्यान किया जा सकता है, वामन भगवान की लीलाएं, आज वामन भगवान का अगर भाव दिवस है, उनकी लीलाओं पर ध्यान किया जा सकता है, उनके रूप का ध्यान किया जा सकता है, उनके गुणों का ध्यान किया जा सकता है। तो ध्यान का मतलब ये है, और कलयुग में ध्यान होता है किसका, नाम का, है ना, नाम का ध्यान, शब्द ध्वनि पर अपना मन केंद्रित करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। तो कपिल भगवान ने बड़े विस्तार से ध्यान योग की व्याख्या की है। ये बिल्कुल एकांत की साधना है, इसलिए भगवान का विविक्त से, विविक्त देश से वित्तम, विविक्त सेवी, है ना। तो कपिल भगवान बताते हैं ध्यान कैसे करना है। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 28वां अध्याय है। इस श्लोक संख्या 12 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। कपिल भगवान मात्र देवभूति से कहते हैं, जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि आंखें बंद करके नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। यदा मनः सम्विरजम् योगेन सुसमाहितम् काष्ठां भगवतो ध्यायेन सुनासाग्रावलोकनः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात विष्णु के अंश के अंश का सूचक है। भगवतः शब्द भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है, उनसे पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है, फिर बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध तथा अन्य रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आते हैं, जैसा कि पिछले श्लोकों में व्यक्त हुआ है। पुरुषार्थनम, ये पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुए हैं। परमात्मा का वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को विष्णु के पूर्ण अंश में केंद्रित करना चाहिए। अब किस प्रकार से भगवान का रूप जिसका ध्यान करना है, भगवान का मुख कैसा है, उत्फुल्ल कमल के समान, खिले हुए कमल के समान भगवान का मुख है, और आंखें कैसी हैं, लाल लाल कमल कोष के समान आंखें हैं। उनका श्याम शरीर कैसा है, नील कमल के समान सुंदर है। और अपने तीन हाथों में संघ चक्र और गदा धारण किए हैं भगवान, मतलब चार हाथ है उनके, संघ चक्र गदा और पद्म, चार हाथ है। प्रसन्न वदनाम भोजन पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पले दले श्यामम संघ चक्र गदा धरम। ये ध्यान का विषय है भगवान का रूप। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि यहां पर यह निश्चित रूप से कहा गया है कि मन को विष्णु के रूप में एकाग्र करना चाहिए। भगवत गीता का कथन है कि निराकार या शून्य का ध्यान ध्यान करता के लिए कष्टप्रद है, कष्ट मिलता है। जो लोग निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त नहीं है। वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। अब भगवान कैसे हैं? नीलोत्पल दल श्यामम, भगवान उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली हैं। लोग प्राय पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम क्यों है। भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण के शरीर की तुलना नीले बादल से की गई है। अचिताम बोध सुंदरम, भगवान का रंग कवि की कल्पना नहीं है। भगवान के शरीर, उनके आयुधों और अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भारुणेक्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोष के समान है और अपने चारों भुजाओं में वे चार चिन्ह संघ चक्र गदा और कमल पुष्प धारण करते हैं। अब ये तो भगवान का मुख हुआ, इसके बाद अब भगवान की कमर, कमर कैसी है भगवान की? उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवरित है, पीतांबर से कमर जो है ना ढकी है उनकी, और वक्षस्थल पर त्रिवत्स का चिन्ह है। उनके गले में चमचमाते कौस्तुभ मणि लटक रही है। तो ध्यान किया पहले मुख का, फिर कमर का, और फिर वक्ष का, और फिर गले का। कैसा क्रम है ध्यान का? मुख, फिर कमर, फिर से ऊपर आ गए वक्षस्थल और गले में। लसत पंकज किंजल के पीत कौशे मातसम त्रिवत्स वक्षसम भ्राजम कौस्तुभा मुक्त कंधरम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरिया पीला है जो कमल पुष्प के केसर के समान है, और वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि लटक रही है, और गले में रत्न और मोती सुशोभित हैं। भगवान सर्व ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिनमें से एक है धन, संपूर्ण धन है। वे ऐसी अमूल्य मणि मणि धारण किए हैं जो इस जगत में कभी मिल नहीं सकती। कौन सी मणि है भगवान? कौस्तुभ मणि है। अच्छा, अब गले में और क्या है? मुख आया, उसके बाद कमर, फिर वक्षस्थल, अब गला। अभी गला में और, गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला धारण करते हैं जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नूपुर से अति उत्तम ढंग से सुसज्जित हैं। अब ध्यान क्या है? गले का ध्यान हो गया, इसके बाद मोतियों की माला, वो भी गले में है, फिर मुकुट, मुकुट का ध्यान करें भगवान का, फिर कंकण, कंकण ये हाथ में, हाथ में कंकण होते ना, कलाई में क्या बोलते हैं उसको? कंगन है ना, कलाई में कंगन। फिर बाजूबंद कहां पर होता है? भुजा में बाजूबंद। फिर नूपुर कहां पर है? पैरों में नूपुर है। मत द्वरे थे कलयां परितम बन मामले परार्थ हार है वलयम कीटांग धनुपुर। तात्पर्य में लिखा है भगवान की फूलों की माला ताजी है, वास्तव में वैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी रहती है, माला कभी मुरझाती नहीं है। यहां तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है, वो मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष और फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता वैकुंठ में। और भौरे पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वे माला में हो या वृक्ष में लगे हों। दिव्यता की विशेषता यह है कि हर वस्तु शाश्वत और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई न कोई वस्तु बनी रहती है। अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ में एक घटाने से एक बसता है और एक में एक जोड़ने से एक मिलता है। ताजे फूलों के चारों ओर भौरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकण, हार, मुकुट तथा नूपुर सभी अमूल्य रत्नों से जटित हैं। क्योंकि रत्न और मोती दिव्य हैं, अतः उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। अच्छा, अब भगवान की कमर कैसी है? कमर और कूल्हे पर करधनी पड़ी है, बहुत सुंदर। कमर और कूल्हे पर करधनी है, बहुत सुंदर। वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। अपने हृदय कमल पर ध्यान करें। अष्टदल कमल है अपने हृदय, उसमें खड़े हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को और आत्माओं को प्रसन्न करने वाला है। कांची गुणोलतश्रोणि हृदयांबोजे विस्तरम् दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। तात्पर्य लिखा है दर्शनीय तमम शब्द का क्या है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि जो योगी हैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। दर्शनीय तम, दर्शनीय का मतलब देखने लायक, और तम लगा दिया मतलब और ज्यादा, बहुत ज्यादा। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक कलमश के कारण संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने आदि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं, तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि अपने शाश्वत रूप में भगवान भक्त के हृदय को इतने सुंदर और मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ है। वास्तविक योगी अपने अधिकुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। अब आगे क्या है? भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। शाश्वत रूप से मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कभी सुंदर लगे और कभी सुंदर ना लगे। भगवान हमेशा सुंदर लगे, लेकिन यहाँ पर सुंदर बनने के लिए हमें कुछ यहाँ पर सुंदर बनने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है और कुछ चीजें जो है अपने जो है ना विशेष रूप से सजानी पड़ती हैं। लेकिन भगवान हमेशा के लिए शाश्वत रूप से सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे सदैव किशोर रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए अत्यंत आतुर रहते हैं। अपि च दर्शनम सस्वं सर्वलोके नमस्कृतम संतम मयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहे कातरम। कातर में रूपा लिखते हैं सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य हैं। इस भौतिक जगत में और वैकुंठ में भी असंख्य लोक हैं। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर वे अन्य सबों के द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अति सुंदर हैं। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु आखिरकार निराकार होंगे, ऐसा नहीं है। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। ये सौंदर्य क्षणिक नहीं है, ये चिरस्थायी। वे नित्य किसो रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी 5:33 कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। मूल पुरुष अद्वितीय हैं, फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं होते। वे सदैव तरुणावस्था में हरे भरे लगते हैं। भगवान की भावभंगी से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। मूक मतलब गूंगे। अभक्त जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है यद्यपि श्री भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं,
क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत हैं, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए आतुर रहते हैं। और ध्यान क्या करना है, भगवान के यश का। भगवान का यश बंद नहीं है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान और उनके भक्तों का ध्यान करें। उसे तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन्ना चवते मनः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण विष्णु राम नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं, यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी ना चलायमान हो। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। जब भक्त मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट या गाड़े के रूप में। भक्तों के दर्शन के लिए 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू मिट्टी काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है, किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओंकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र भी हैं। आगे कपिल भगवान कहते हैं, इस प्रकार भक्ति में सदैव लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े चलते लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर और आकर्षक होती हैं। स्थितम मृदंतम आसीनम शयानम वागुहाशयम प्रेक्षणीय हितम ध्यायेन शुद्ध भावेन चेतसाम। तात्पर्य मित्रों पर लिखते हैं, अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की विधि तथा भगवान के यश और लीलाओं के कीर्तन की विधि एक समान है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना और मन को स्थिर करना मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और इस प्रकार क्षोभ से मन के भीतर भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपने गौओं तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन भागवत से पढ़ा जा रहा हो और यदि उसे कोई बालक भी सुने तो उसे सुनने से ही भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगाना भी सम्मिलित है। भगवान चैतन्य ने संतुति की है कि मनुष्य को सदैव भगवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके ही वही लाभ उठा सकें। योग के लिए भगवान के दिव्य लीलाओं का, चाहे वे खड़े हों चलते हों या लेटे हों, ध्यान आवश्यक है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर विचार करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तस्मिन् लब्धं पदं चित्तं सर्वावयवे संतितं विलक्ष्य तत्र संयोज्यां अंगे भगवतो मुनिः। तात्पर्य में तो बल्कि है, मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन अनुभव तथा इच्छा करने में अत्यंत पटु। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ हैं, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है। योगी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, निम्न लिखित श्लोक भगवान के अंग अंग प्रत्यंग देखने की संतुति करते हैं। भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यह संतुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, फिर छाती, फिर गर्दन, फिर मुख इत्यादि। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। अब कैसे भगवान के चरण कैसे हैं? भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमल में केंद्रित करे, जो वज्र अंकुश ध्वजा और कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। भगवान के चरण में ये चिन्ह है, उनके सुंदर माणिक से नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहनतम को दूर करने वाली है। गहन माने घोर, तम माने अंधकार, हृदय के घोर अंधकार को दूर करती है। क्या? उनके चरण कमल के नाखून, नाखूनों में चंद्रमा का प्रकाश, जैसे चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, ऐसे उनके जो है चरण के जो नाखून है हृदय के घोर अंधकार को दूर करते हैं। संचिन्तये भगवत चरणारविन्दम् वज्रांकुश ध्वजस् सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन् नख चक्रवालिन् ज्योत्नाभिराहतः महं हृदयान्धकारम्। तात्पर्य बोलते हैं, यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का ठोस वर्णन दिया गया है। भगवान के चरण तमन चरण तल को वज्र, पताका, कमल और अंकुश की आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों और उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। ये मुक्ति ध्यान से नहीं, अभी तो भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। अब देखो भगवान के चरणों की और क्या विशेषता है। अभी तो बताई कि उनके चरण में जो है वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चिन्ह है, और क्या विशेषता है? उनके नाखूनों से चंद्रमा का प्रकाश निकलता है जो हृदय के अंधकार को दूर करता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि नास्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास होता है, कि ज्ञान के जो है ना प्रकाशमान दीपक के द्वारा मैं हृदय का अंधकार दूर करता हूँ। तो यहाँ पर वो बताया कि वो ज्ञान का प्रकाशमान दीप है क्या? उनके चरण के नाखून का प्रकाश ही है, वही है ज्ञान का दीपक, हृदय का अंधकार दूर करता है। और उनके चरण की और क्या विशेषता है? पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य बन गए। शिव जी की ज्यादा पूजा होने लगी, क्यों? क्योंकि उनके भगवान के चरण के जल से यानी गंगा जी से अपने सिर को धोते हैं, इसलिए भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। भगवान के चरण की और विशेषता क्या है? वज्र है, वज्र छोटा सा होता है और बड़ा भारी पहाड़ को पाउडर कर देता है वज्र। तो इस भगवान के चरण है तो छोटे है और हमारे पाप का जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा है, तो भगवान का छोटा सा चरण जो है ना हमारे पाप के पहाड़ को क्या कर देगा? पाउडर बना देगा, भस्म मतलब कर देगा, है ना? तो ये भगवान के चरण की विशेषता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। यच्छोचन स्थित सरे प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनिकृतेन सेवा सेवो ध्यातुर्मना समन शैल श्रेष्ठ वज्रम ध्याये चिरं भगवतं चरणारविन्दम्। तात्पर्य प्रभा लिखते हैं, इस श्लोक में शिव जी की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है। निर्विशिष्टवादी का सुझाव है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं होता, अतः वे विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है, किंतु वस्तुतः भगवान हर प्राणी के परम स्वामी है ना। तो शिव जी भी जो ना उनके चरण कमल का जो जो जल है उसको अपने सिर में चढ़ाते हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि शिव जी और विष्णु जी समान, कैसे कह सकते हैं? श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है एक अलग ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य परमेश्वर कृष्ण है और अन्य सभी जिनमें शिव और ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं कृष्ण के दास हैं, अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन है। अच्छा आगे प्रभु लिखते हैं यहाँ पर भगवत चरणारविंदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवता का विशेष उल्लेख है। भगवता का अर्थ है भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिवजी सदैव महान और कल्याणप्रद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत है, अतः वे और भी अधिक शुभ और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बढ़ी है तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। अच्छा तो इतनी तो बात हुई भगवान के चरण कमल की। अब इसके आगे कपिल भगवान क्या कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह अपने हृदय को सभी देवताओं द्वारा पूजित और परम पुरुष ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों और जंघाओं को चाँपती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार भी उनकी सावधानी के साथ सेवा करती हैं। जानो द्वयम् जलज लोचनया जनन्याम लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विदातु उर्वोर्निधाय कर पल्लव रोचि सायन संलालितम् हृदि विभो रभवस्य कुर्यान्। तो अब क्या चिंतन करना है, भगवान की जंघाओं का। जंघा मतलब ये इसको क्या बोलते हैं जो घुटने के नीचे होती है, संस्कृत में उसको जंघा बोलते हैं या जानू इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पिंडली बोलते हैं। तो पैर के ऊपर ये चरण के ऊपर पिंडली है, इसका ध्यान करें। लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से दबाती हैं भगवान के इन पिंडलियों को, तो ये ध्यान का विषय है। तात्पर्य प्रबल लिखते हैं कि चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ ये सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में ये चित्र रखे, भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है, अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। ये कोई कल्पना नहीं है, लक्ष्मी जी हैं भगवान की पत्नी, तो उनके चरणों को जो है ना वो दबाती हैं। आगे फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, उसको उरु कहते हैं संस्कृत में, उरु। तो पिंडली से ऊपर फिर उरु है। जो समस्त शक्ति की आकार है वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो जांघे अत्यंत भव्य लगती है। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे। अब जंघा के ऊपर नितंब है, नितंबों का ध्यान करे जो करधनी से घिरे हुए हैं, और ये करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। ओरोस पर नभजियो रधि शोभमानं वो जो निधि अतधिका कुसुमाम भासो व्यालम विपीत वरवासति वर्तमानं कांची कलाप परिरंभिनितं बिंबम। इसके बाद योगी को चाहिए कि भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करें। देखा जंघा से आप नाभि में आ गए, उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। ये कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनों पर केंद्रित करना चाहिए। नाभि से स्तन पर आ गए जो श्रेष्ठ मरकत मणि के जोड़े के सदृश हैं, और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। माला से जो ना ये भगवान के जो स्तर हैं वो बहुत ही चमक रहे हैं। नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनिधिषणा खिल लोके पद्मम् व्योढम हरिमणि विसंस्तनयोरमुष्यम् ध्यायेद्वयम् विशदहार मयूख गौरम। तात्पर्य कृपा लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग भी बद्ध नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता, किंतु ब्रह्म संहिता से हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। अच्छा, अब ये तो हुआ वक्षस्थल। अब वक्षस्थल में और बता रहे हैं ध्यान करना है, फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। अच्छा, स्तन, अभी तक स्तन था ना, स्तनों से फिर वक्ष, स्तनों के ऊपर वक्ष है, तो वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो जिसमें कौन निवास करती है, महालक्ष्मी निवास करते हैं। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद और नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में, अब वक्षस्थल के ऊपर क्या है, गर्दन, गर्दन का ध्यान करना चाहिए, भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। गर्दन में क्या है, कौस्तुभ मणि। वक्षोधिमा स्मृतिमस्य महाविभूते पुंताम मनोनयन निर्विधिमादधानम् कंठम च कौस्तुभमणि रतिभूषणार्थम् कुर्यान् मनस्य खिल लोके नमस्कृतस्य। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, ना कि मणि से गर्दन की सुंदरता बढ़ती है। सामान्य रूप में क्या होता है कि आभूषण आपके शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन भगवान का उल्टा है, भगवान का शरीर आभूषणों को सुंदर बनाता है, है ना। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है, है ना, जो मणि को सुंदर बना रही है गर्दन। फिर भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिसे सभी लोग ध्यान कर सकें। अच्छा, अब गर्दन के बाद कहां पर आना है, भुजाओं में, गर्दन के बाद भुजाओं। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र का भी ठीक से चिंतन करे जो 1000 आरों से और असह तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो भगवान की जो ना भुजाओं का ध्यान करना है, फिर भुजाओं के बाजूबंदों का ध्यान करना है। वो बाजूबंद घिस गए हैं, कैसे, मंदर पर्वत को जब घुमाया तो वो रगड़ रहा था उनके बाजूबंदों से, तो बाजूबंद उनके घिस गए हैं मंदर पर्वत के रगड़ने से, है ना। और उसके बाद फिर उनके कंगनों पर ध्यान करना है, और फिर चक्र का ध्यान करना है, और संघ का ध्यान करना है उनके हाथ में है जो। तो गर्दन से कहाँ गए, भुजा में, भुजा से बाजूबंद, बाजूबंद से फिर कंगन, कंगन से फिर उनके हाथ के आयुध संघ और चक्र। बाहू समुन्दर गिरे परिवर्तने निर्णय बाहुबलियान के पाला सतारे मसाई है तेज हम संखम चतत्कर सरोरुह राजे हंसम। अच्छा, अब क्या ध्यान करना है, भगवान की गदा का ध्यान करना है। योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये गदा शत्रु सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है, गदा में खून लगा हुआ है। ध्यान करो क्या भगवान की गदा का जिसमें शत्रु का खून लगा हुआ है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए। अब गदा से फिर आगे कहां, गले में, फिर गले में आ गए, सुंदर माला का ध्यान करना चाहिए जिसमें मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कौमोदकी भगवतो दैतांस मरेत दिग्धामराति भट श्रोणित करतमेन माला मधुव्रत वरुथ जरोप घोष्टाम चैत्यस्य तत्त्वम बलम मणिमस्य कंठे। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि गदा जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं उन्हें भी अपनी गदा से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसी पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है ये गदा भगवान को प्रिय है क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सामने से कीचड़ बन जाता है समझे उसी प्रकार शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। वो गदा गंदली गंदी है। भक्त को चिंतन करना चाहिए किससे शत्रुओं के रक्त से गंदली है भगवान की गदा कीचड़ से सनी है। ऐसी गदा का ध्यान करें तब योगियों को भगवान के अब देखो गदा से गर्दन में आए और गर्दन से फिर आ गए मुख में। भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा बस अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। मुख का ध्यान करें और फिर नासिका नाक उनकी अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकाकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। मुख नासा और गाल इनका ध्यान करें। और गालों में क्या विशेषता है कि कान में जो कुंडल है मकर की आकृति के वो हिलते हैं तो गाल जो है बहुत सुंदर लगते हैं उनके प्रकाश पड़ता है गालों में। भृत्यानुकंपित गृहीत मूर्ति संचिंत भगवतो वदनारविंदम विस्फोरन मकर कुंडल बलगितेन विद्योतितामल कपोल मुदारे नासम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं किंतु वे सब एक हैं। अब योगी को ध्यान करना है क्या सुंदर मुख मंडल का ध्यान करना है। अभी तो मुख का नासिका और गालों का ध्यान किया आप पूरे मुखमंडल का मुखमंडल ये मुखमंडल और मुख ये है ना मुख नासा गाल ये अलग अलग है और मुखमंडल क्या है पूरा। तो मुखमंडल का ध्यान करता है जो घुंघराले बालों से सुशोभित है मुखमंडल में बाल घिरे हुए और कमल जैसे नेत्र और नास्ति भौं से सुशोभित है। भ्रुकुटी नृत्य करती है भगवान की इसकी शोभा के आगे भौरों से घिरा कमल और तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। कमल कुछ भी नहीं है इसके बाद योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितमन का ध्यान पूर्ण भक्तिभाव से करे। अब क्या भगवान की चितवन कैसे देखते हैं भगवान क्योंकि उससे भक्तों की अत्यंत भयावह है तीन प्रकार के कष्टों का समान होता है। प्रेम भरी मुस्कान से उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तस्यावलोकम कृपयाति घोरे तापत्रयोपशमनाय सृष्टि मक्षणो स्निग्ध स्मितानुगुणितम विपुल प्रसादम ध्याये चिरम विपुल भावनया गुहायाम। इसके बाद ध्यान करो भगवान का क्या उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। अभी तक कितने जन्मों में शोक के अश्रु जो बहाए हैं आपने उनका एक समुद्र बन चुका है आपको पता है आपके आंखों से जितने अश्रु बहे हैं कई कई जन्मों में उन अश्रुओं का एक समुद्र बन चुका है ठीक है ना। और वो समुद्र जो है ना भगवान की मुस्कान से सूख जाता है क्या समझे। वो अश्रुओं का समुद्र जो कई कई जन्मों में आपने बहाए हैं आंसू वो समुद्र जो है ना सूख जाता है। कैसे? भगवान की मुस्कान से सूख जाता है। जो उनको नमस्कार करते हैं तो जो भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान अपनी मुस्कान से उस शोक के समुद्र, शोक के अस्त्रों के समुद्र को सुखा डालते हैं। उसे भगवान की अकुटिल भावों का ध्यान करना चाहिए। तेरी भ्रुकुटी जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान भौहें टेढ़ी करते हैं। हासम हरे रमणता खिले लोक तीव्रम शोकाश्र सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायाशम भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्यम। अब ध्यान करें भगवान का। क्या योगी को चाहिए? कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करें। अभी तो मुस्कान थी, अट्टहास 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 कराता है। मुस्कान में तो आवाज नहीं होती है, चेहरा केवल खिला हुआ रहता है। अट्टहास में क्या होता है? आवाज निकलती है। अट्टहास उनका अट्टहास कितना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके ओठों की कांति के कारण गुलाबी हो जाते हैं। ओठ ओठ लाल हैं तो उनकी कांति से दांत भी क्या हो गए? गुलाबी हो गए। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। ध्यानायनम प्रहसितम बहुलहा धरोष्ठम भासारुणायत तनु द्विज कुंद पंक्तिहीन ध्याये स्वदेह कोहरे वसितस्य विष्णुर् भक्त्यार्द्रयार्पित मनाना पृथ्वीं दृक्षेन। इसके बाद इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और तीव्र प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए बंसी प्रयुक्त की जाती है। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भाव भक्त्याद्र हृदय उत्पुल प्रमोदा और कंठ बात कलया मोर अर्धमान तचाप चित्त बड़े सम सन केर व्योंके। जब इस प्रकार मन समस्त भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। दीपक की लौ जहां हवा नहीं है तो दीपक की लौ सीधी होती है और प्रकाश पैदा करती है। उसी प्रकार मन जो है ना स्थिर हो जाता है और प्रकाशमान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे एक आकार अनुभव किया जाता है, क्योंकि भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। मुक्ताश्रयम् यर्हि निर्विषयम् विरक्तम् निर्माणम् इच्छति मनः सहसा यथाचिहि आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अनिच्छते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की ध्यान योग की, क्योंकि इन तीन श्लोकों में भगवान कहते हैं ध्यान योग परोनित्यम, ध्यान योग के हमेशा परायण है। तो कपिल भगवान ने विस्तार से जो भगवान के रूप ध्यान का वर्णन किया है तो वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के।